उत्तराखंड के बाजू में जो विजयार्द पर्वत है वहां से तो मोक्ष जा रहे हैं ना, तो वो भी भरत क्षेत्र है और ये भी भरत क्षेत्र, वो भी आर्यखंड है ये भी आर्यखंड, किंतु वहां पर एक काल का परिवर्तन है और यहाँ पर छह कालों का परिवर्तन है। छह काल का परिवर्तन होने से यहाँ पर अवसर्पिणी के चौथे काल में और उत्सर्पिणी के तृतीय नंबर तीसरे नंबर के काल में जीवों को मोक्ष मिलना प्रारंभ होता है। यहाँ पर विजयार्द पर्वत में प्राप्ति होती है, 160 विदेह क्षेत्र होते हैं, निरंतर केवली मन परिज्ञानी अवधि ज्ञानी केवल श्रुत केवली मति श्रुत ज्ञानी ये मुनि महाराज निरंतर बने रहते हैं और निरंतर मोक्ष होता ही रहता है उनको। जैसे विदेह क्षेत्र में होता है वैसा ही विजयार्द पर्वत में समझना चाहिए। विजयार्द पर्वत है ना, मालूम है कहाँ कहाँ है विजयार्द पर्वत, कितने होते हैं ढाई द्वीप में? विजयार्द पर्वत कितने होते हैं? नहीं, टोटल ढाई द्वीप में कितने होते हैं? भरत क्षेत्र में तो है ही एक, पांच भरत क्षेत्र हैं तो पांच भरत क्षेत्र हैं तो पांच विजयार्द तो हैं ही, ऐरावत की अपेक्षा से पांच विजयार्द और भरत क्षेत्र की अपेक्षा से पांच विजयार्द ये 10 हो गए। विदेह क्षेत्र कितने हैं? अढ़ाई द्वीप में विजयार्द कितने हैं? 160 विदेह क्षेत्र हैं और विदेह क्षेत्र में 160 हैं तो उनके पीछे पांच पांच म्लेच्छ खंड और एक आर्य खंड, जैसा यहाँ भरत क्षेत्र में है ना व्यवस्था, वहां दिखाया है भरत क्षेत्र ऊपर टुकड़ा आधा चंद्राकार का, यहाँ पर जैसे पांच म्लेच्छ खंड और एक आर्य खंड है और एक विजयार्द पर्वत है, वैसे सब जगह समझना चाहिए। विदेह क्षेत्रों में विदेह क्षेत्र की संख्या टोटल कितनी है? 160। जम्बूद्वीप में कितने हैं? जम्बूद्वीप में 32 हैं। और धातकी खंड में कितने हैं? 64, उससे डबल रहेंगे। और पुष्करार्ध द्वीप में कितने हैं? वहां पर भी 64 हैं। तो 64 कहाँ कहाँ उस दिन दिखाया था, मालूम है ना? तो 64 और 32 कितने हो गए? 160 विदेह क्षेत्र होते हैं, पांच भरत क्षेत्र होते हैं, पांच ऐरावत क्षेत्र होते हैं, तो ये 10 हो गए ऐरावत भरत मिलकर के, और वो 160 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 170 आर्यखंड हैं। और प्रत्येक आर्यखंड के पीछे पांच म्लेच्छ खंड होते हैं नियम से, और एक विजयार्द पर्वत होता है नियम से। तो विजयार्द पर्वत यदि एक एक होता है तो कितने हो गए? 170। आर्यखंड 170 है तो विजयार्द क्षेत्र भी 170 है, लेकिन म्लेच्छ खंड पांच पांच है तो आठ सौ पचास होते हैं। 850 क्या होते हैं? म्लेच्छखंड 850 होते हैं। दिख रहा है? यहाँ पर विदेह क्षेत्र, ये सीता नदी है, यहाँ विदेह क्षेत्र कितने हैं? ये 8 हैं। और नदी के उस पार कितने हैं? 8 हैं। यहाँ कितने हैं? 8। यहाँ 8 कितने हो गए? 32 विदेह क्षेत्र हो गए। और यहाँ 32 और यहाँ 32, ये 32 64 किस द्वीप में? धातकी खंड में 64 हो गए, यहाँ 32, यहाँ 32। धातीय खंड में मेरु पर्वत कितने हैं? दो हैं, एक ये है और एक ये। पुष्करार्ध में मेरु पर्वत कितने हैं? एक ये और एक ये। और यहाँ पर विदेह क्षेत्र मेरु पर्वत के आसपास कितने हैं? 32, यहाँ 32। देखो यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8, 32 हो गए। 8 चौक 32, यहाँ 8, नदी के उस पर 8, यहाँ 8 और यहाँ 8, 32 हो गए। इधर 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 8 8 और इधर 8 8, यहाँ 8 8, यहाँ 8 8, ऐसे यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ सब जगह 8 8 ही रहते हैं, लेकिन यहाँ दो सुमेरु पर्वत होने से विदेह क्षेत्र की संख्या भी डबल हो गई, इसलिए 64 64 और ये 32। देखो विदेह क्षेत्र की सीमा कहाँ से कहाँ लेना, ये जो एक कलर का दिखता है ना, ये देखो कंप्लीट ये भाग, ये डमरू आकार का बनता है, डमरू आकार का यह विदेह क्षेत्र है पूरा, अन्यत्र कहीं भी विदेह क्षेत्र नहीं है। बाकी जगह पर्वत हैं, ये देखो ये पर्वत है नील पर्वत, नील पर्वत यहां से लेकर ऐसे अखंड है यहां तक, ये सब नील पर्वत। फिर ये कौन सी पर्वत, ये एक है रुक्मी पर्वत। फिर ये कौन सी पर्वत, कौन सा पर्वत, ये सिखरी पर्वत, ये सिखरी पर्वत। तो ये इधर तीन पर्वत हैं जम्बोद्वीप में, एक दो तीन, तीन पर्वत। विजयार्ध को लेकर 4 हो गए, परंतु महापर्वत, ये छोटा पर्वत है विजयार्ध, ये महापर्वत मुख्य पर्वत कितने हैं? 3। इधर 3 हैं, तो इधर भी 3 है, 1 2 ये 3, तो 3 और 3 6, 6 कुलाचल पर्वत हैं। इनको कौन सा पर्वत बोलते हैं? कुलाचल पर्वत। और दो विजयार्ध पर्वत हैं, एक भरत में, ये विजयार्ध पर्वत एक भरत में और एक ऐरावत में। और फिर विजयार्ध पर्वत क्या विदेह क्षेत्र में नहीं है? 32 विदेह क्षेत्रों में विजयार्ध पर्वत नहीं है क्या? है, इसमें 8 विदेह क्षेत्र हैं, तो एक एक विजयार्ध पर्वत भी इनके अंदर होना ही चाहिए। तो विजयार्ध पर्वत कितने होंगे? यहाँ 32 होंगे, और ये एक और ये एक जम्बूद्वीप में कितने होंगे फिर? 34, 34, 34 विजयार्ध पर्वत हैं। 34 से डबल करो 68, 68 से डबल करो 68, 68 और 68, 68 और 68 100, भरत क्षेत्र 2 बंधु अदे हेकल नहीं सुनो, तो जम्बूद्वीप में विजयार्ध कितने बन गए? 34, फिर इससे डबल तो आगे रहेंगे ही, तो 34 34 68, और पुष्करार्ध में कितने रहेंगे? 68, पुष्करार्ध में भी 68, इसमें भी 68 और इसमें 34, टोटल कितने हो गए? 170 हो गए, होना ही चाहिए 170, ज्यादा हो ही नहीं सकते, ज्यादा हो ही नहीं सकते, 34 68 68। वो कैसे गिना था? 32 64 64, ये कितने हो गए थे? 160, ये क्या थे? 160 हो तो विदेह क्षेत्रों की संख्या है, और 5 भरत 5 ऐरावत, इसमें 10 विजयार्ध बढ़ गए, वो 160 विजयार्ध विदेह क्षेत्र संबंधी, और भरत ऐरावत संबंधी 10 विजयार्द पर्वत कितने हो गए, 170 हो जाएंगे। ये इसमें और क्या समझना है, इसमें नदियों का नाम भी है। देखो इस पर्वत से निकली नदी पश्चिम की ओर मिलती है और इस तालाब से निकली नदी पूर्व की ओर, तो इनका नाम क्या है, ये कौन सा है, सीता नदी, ये सीतोदा, ये कौन सी नदी, नरकांता नदी, नारी नदी, ये नारी नदी, ये नरकांता नदी, ये कहां से निकलती है, इसी सरोवर से। सीता नदी और सीता नदी जिससे निकली है उसी सरोवर से ये नरकांता नदी निकलती है और आगे के तालाब से सुवर्ण, इधर कौन सी नदी निकली, नारी नदी और ये एक निकलती है, एक निकलती है, एक कौन सा नाम है, ये रूप्य कोला और ये सुवर्ण कोला, ये नदी सुवर्ण कोला इस तालाब से निकलती है, रूप्य कोला इस तालाब से निकलती है, इस तालाब का नाम क्या है, देखो ऐसे नाम है ना तत्वा सूत्र में, पद्म महापद्म तिगिंच केसरी पुंडरीक महापुंडरीक, ये तालाबों के नाम है तत्वा सूत्र में पाठ करते हैं ना, ये उधर से दिखता है, कैसे दिख रहा है, इधर तो आकर के बैठ जाए, थोड़ा आगे बढ़ो, ये लास्ट वाला जो पर्वत है ये कौन सा पर्वत है, पुष्करार्ध द्वीप में, पुष्करार्ध द्वीप के बीच में कौन सा पर्वत है, मानुष्योत्तर पर्वत है, ये मानुष्योत्तर पर्वत गोल आकार से है। पुष्करार्ध द्वीप कहाँ तक है, यहां से लेकर स्टार्ट हो गया है, ये उसकी सीमा ये है, तो यहां से यहां तक तो अर्धा हो गया और ये बीच में पर्वत आ गया चारों ओर, और यह ऐसा अर्धा तो इधर भी अर्धा है यहां तक है, परंतु इधर जो है ये मानुष्योत्तर पर्वत के नीचे ये अर्धा पुष्करार्ध द्वीप में क्या है, ये तो कर्म भूमि हुई है ना, हाँ इधर भोग भूमि है, उधर मानुष्योत्तर पर्वत के नीचे उतर गए तो भोग भूमि शुरू हो गई और इधर क्या है, कर्म भूमि। आज तक मोक्ष जो गए हैं सिद्ध परमेष्टि बने हैं, ये पंच परमेष्टि सिद्ध बने हैं, चार परमेष्टि अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, अनादिकाल से साधु बन रहे हैं, अनादिकाल से अरहंत बन रहे हैं, आचार्य परमेष्टि बन रहे हैं, उपाध्याय परमेष्टि, ये कहां जा रहे हैं, सभी सिद्धालय में जा रहे हैं, तो कहां से जा रहे हैं, ढाई द्वीप से जा रहे हैं, ये पूरा ढाई द्वीप है इतना, तो मनुष्य इसके भीतर ही रहते हैं, तीन लोक में मनुष्य अगर कहीं हैं तो केवल ढाई द्वीप में ही हैं, ढाई द्वीप के बाहर एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा, जा भी नहीं सकता यहां से और वहां उत्पन्न भी नहीं हो सकता, मनुष्य जिसको बनना है उनको यहीं आना पड़ेगा। जैसे मान लो ढाई द्वीप के बाहर एक इधर कहीं भोग भूमि में एक त्रिरंच प्राणी है, वो उसको कितनी इंद्रियां होती हैं, पांच इंद्रियां और एक मन होता है क्या, नहीं, भोग भूमि में असंगी जीव होते हैं क्या, नहीं है, तो यहां पर संगी जीव ही हैं, केवल संगी त्रिरंच जीव हैं, तो यहां से कोई त्रिरंच मरा और मनुष्यायु को बांध करके मरा तो मर सकता है क्या, हाँ बोलो। वहाँ का कोई त्रिरेंच मनुष्यायु को बांध कर मरा और दैवीप में आया, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ये तो ध्यान में है ना। हाँ भोग भूमि की त्रिरेंच हो या मनुष्य हो, नियम से मृत्यु के पश्चात कहाँ जाते हैं? देवगति में। सम्यक दृष्टि हो तो क्या बनते हैं? वैमानिक देव बनते हैं। और मिथ्या दृष्टि हो तो क्या बनते हैं? भवनत्रिक में जन्म लेते हैं। यहाँ का कोई त्रिरेंच कर्म भूमि का, भोग भूमि का तो स्वर्ग जाएगा, और कर्म भूमि का कोई त्रिरेंच है और वह मनुष्य बनना चाहता है तो ढाई दीप के अंदर का त्रिरेंच तो मनुष्य बन सकता है, परंतु ढाई दीप के बाहर का संगी पंचेन्द्रीय त्रिरेंच मनुष्य नहीं बन सकता। अब यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि अंतिम कर्म भूमि एक है जहाँ पर स्वयंभू रमन आधा द्वीप उस ओर का, आधा द्वीप और उसके बाद है समुद्र, उसका नाम स्वयंभू रमन समुद्र, स्वयंभू रमन द्वीप, स्वयंभू रमन समुद्र। स्वयंभू रमन द्वीप जो है वो भी गोल ही है, तो उस स्वयंभू रमन समुद्र द्वीप जो गोल है उसके बीच में भी ऐसा एक पर्वत है। किस प्रकार का? मनुष्योत्तर पर्वत के आकार से एक बीचों बीच पर्वत है, राउंड। तो उस पर्वत का नाम है नागेंद्र पर्वत। कौन सा पर्वत है? नागेंद्र पर्वत। नागेंद्र पर्वत के इस ओर अंदर के साइड में, यानी असंख्यात द्वीप समुद्र ऐसे होते गए हैं ना, तो इस ओर है आधा जो द्वीप इस ओर आता है वहाँ संगी पंचेन्द्रीय त्रिरेंच पाए जाते हैं जो भोग भूमि के ही कहलाते हैं नागेंद्र पर्वत में। और नागेंद्र पर्वत के उस पार कर्म भूमि मानी जाती है, वहाँ पर भी त्रिरेंच ही है, केवल त्रिरेंच ही है और कुछ नहीं वहाँ। और वहाँ असंगी पंचेन्द्रीय भी हैं और संगी पंचेन्द्रीय भी हैं। कहाँ पर? नागेंद्र पर्वत के प्रभाग में। कर्म भूमि होने से संगी पंचेन्द्रीय भी हैं, असंगी पंचेन्द्रीय भी हैं और विकलत्रय भी हैं। द्विइंद्री, तीनेन्द्री, चतुरेन्द्री, ये विकलत्रय जीव भी वहाँ हैं। और कौन है फिर? ये सभी हैं एकेन्द्री, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये भी हैं वहाँ। कर्म भूमि होने से विकलत्रय रहेंगे, असंगी पंचेन्द्रीय भी रहेगा, एकेन्द्रीय जीव भी रहेंगे, सम्मूर्छन जीव भी रहेंगे, लब्धि अपर्याप्तक जीव भी रहेंगे, पर्याप्तक जीव भी रहेंगे, अपर्याप्तक जीव भी रहेंगे। सब प्रकार के जीव कर्म भूमि में पाए जाते हैं, लेकिन भोग भूमि में एक ही प्रकार का जीव पाया जाएगा, संगी पंचेन्द्रीय। मनुष्य तो संगी है ही, त्रिरेंच और मनुष्य ये दोनों मन सहित होते, पंचेन्द्रीय जीव ही केवल पाए जाते हैं। हमारे शरीर में निगोदी जीव हैं क्या? नहीं। किसके शरीर में? औदारिक शरीर है ये, कर्म भूमि वाले मनुष्य का औदारिक शरीर निगोदी जीवों से सहित माना गया है, ये निगोदी जीवों से युक्त है। निगोदी जीव है तो निगोदी जीव सम्मूर्छन होते हैं कि गर्भज होते हैं? निगोदी जीव सम्मूर्छन होते हैं, और ये निगोदी जीव सम्मूर्छन जीव कर्म भूमि में ही होते हैं, भोग भूमि के मनुष्यों के या त्रिरेंचों के शरीर में ये निगोदिया बादर निगोदी जीव नहीं रहते, क्योंकि वहां सम्मूर्छन जीवों का अभाव है, उनका शरीर सम्मूर्छन जीवों से रहित है। देखो एक याद रखें, सम्मूर्छन जीव जो निगोदी हैं वो किन किन जीवों में नहीं होते? तो बताया गया पृथ्वी कायिक में निगोदी जीव नहीं होते, जल कायिक में नहीं होते, अग्नि कायिक में नहीं होते, वायु कायिक में नहीं होते, वनस्पति कायिक में निबोध जीव पाए जाते हैं। मनुष्य और त्रिरिंचों के शरीर में निबोधी जीव पाए जाते हैं। केवली भगवान के शरीर में यानी अरहंत परमिष्टि का जो शरीर है ना, भगवान के शरीर में भी निबोधी जीव नहीं होते। और मुनियों के शरीर से जो आहारक शरीर निकलता है उसमें भी निबोधी जीव नहीं होते, और तैजस शरीर जो निकलता है उसमें भी निबोधी जीव नहीं होते। नारकी जीवों के शरीर में निबोधी जीव नहीं होते। देवों के शरीर में निबोधी जीव नहीं होते। इतने स्थानों पर निबोधी जीव नहीं होते, ऐसा समझना चाहिए। कहाँ कहाँ नहीं होते याद रहेगा? क्या क्या बताया? पहले तो एक इंद्रियों में कौन कौन से आ गए? पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, ये चार। और केवली भगवान का शरीर, औदारिक आहारक शरीर, तैजस शरीर, और नारकी जीवों का शरीर, और देवों का शरीर, केवली भगवान का शरीर। इस प्रकार इतने स्थानों में निगोदी जीव पाए नहीं जाते। भोग भूमियों का शरीर, भोग भूमि जीवों का शरीर, निगोदी जीव नहीं पाए जाते। मनुष्य और त्रिरिंच भोग भूमि के हा? जो जिनको केवल ज्ञान हो गया है उनके शरीर में नहीं रहते। हाँ, उससे पहले रहते हैं किंतु केवल ज्ञान होने के बाद नहीं रहते। तीर्थंकरों का शरीर भी निगोदी जीवों से युक्त होता है। कब तक होता है? गृहस्थ अवस्था में, मुनि अवस्था में, किंतु अरहंत अवस्था में नहीं होते। सिद्ध अवस्था में शरीर ही नहीं है तो कहाँ रहेंगे वो? सिद्ध अवस्था में तो होते ही नहीं। तो ये हो गई जानकारी निबोधी जीवों की, कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते। तो हम ये बता रहे थे अंतिम द्वीप और समुद्र, आधा समुद्र और पूरा द्वीप कर्म भूमि का क्षेत्र माना जाता है। अंतिम आधा द्वीप और पूरा समुद्र कर्म भूमि है। वो वहां की मछलियां, वहां का एकेंद्री, द्विंद्री, तीनेंद्री, विकलत्रय, ये सभी जीव वहां पाए जाते हैं। वो वहां पर मनुष्यायु को बंद करके ढाई द्वीप में जन्म लेते। देखो कितना पार करके आना पड़ेगा उनको, वहां मर गए तो मनुष्यायु को बंद करके वो उस किनारे पर मर गए। एक राजू है, आधा राजू, हाँ आधा राजू, बराबर कहा, क्योंकि अब तो पूरा नक्शा सामने आ रहा है। आधा राजू विहार करके आ गए। केवल तीन समय में, हाँ तीन समय के अंदर आ गए। तो जीव की गति कितनी तेज है मरने के बाद। आयु कर्म, मनुष्यायु कर्म को लेकर के भाग रहा है। इतना भाग रहा है कि एक सेकंड के, देखो एक सेकंड में असंख्यात समय हैं। एक सेकंड के अंदर असंख्यात समय बनते हैं, उसमें केवल तीन ही समय में यहां आ गया। तो एक समय, एक सेकंड भी नहीं लगा उसको। जीव की गति की पहुंच बहुत स्पीड। अच्छा, सिद्ध परमिष्टि यहां से सिद्धालय में जाते हैं तो धीरे धीरे चलते हैं क्या? बैठते बैठते उठते उठते थक जाते होंगे। 14-7 राजू हैं यहां से एक समय में जाते हैं, तो कितनी स्पीड से जाएंगे वो? एक ही समय में जाते हैं तो वहां, यहां मोक्ष हुआ, एक समय पर्याप्त है 7 राज्य गमन करने के लिए। और कोई देव विमान यहां से जाना चाहिए सिद्धालय तक, वो एक सेकंड में लाखों किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, एक सेकंड में। और फिर उसको कितने महीने लगेंगे? 6 महीने में एक राज्य पार करता है, 6 महीने में एक राज्य पार करता है, तो कितने महीने में 7 राज्य पार करता है? 42। 42 महीने लगे तो कितने वर्ष हो गए? 3.5 वर्ष। तो 3.5 वर्ष तक देव विमान जाएगा। एक सिद्ध परमेष्ठी मोक्ष गए और उनके पीछे भागे तो उनको कवर नहीं कर सकते तो। हम भी आपके साथ आते हैं, रुको 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 कर, वो तो पहुंच चुके हैं, आप जाओ 3.5 साल तक जाओ, जाते रहो, लाखों किलोमीटर की रफ्तार से जाते रहो। अद्भुत शक्ति है जीव के पास, अनंत शक्ति प्रकट करने के बाद जीव स्वतः स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन करने वाला हो जाता है और ऊपर चला जाता है, बहुत स्पीड से चला जाता है। एक समय पर्याप्त है तो देखो, दूसरा समय लगा ही नहीं उसको, 7 राज्य चला गया और देव को 1 राज्य चलने में ही 6 महीने चाहिए, और वह विमान लाखों किलोमीटर की रफ्तार से भागता है तो भी कवर नहीं कर पाएगा। तो जीव की गति अधिक है कि देवों का विमान की गति अधिक है? जीव की गति अधिक है। ऐसा ही पुद्गल परमाणु की गति के संबंध में भी जिनेन्द्र भगवान ने शास्त्रों में चर्चा की है। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि जितनी शक्ति जीव में है उतनी ही शक्ति पुद्गल एक परमाणु में भी है, शुद्ध परमाणु में। वह शुद्ध परमाणु भी गमन करना चाहे तो वह 14 राज्य गमन कर सकता है। देखो, सिद्ध परमेष्ठी को तो यहां से वहां 1 समय लगा, ये तो सिद्ध परमेष्ठी को लगा, इससे भी ज्यादा जा सकते हैं, वो शुद्ध जीव है, ये तो जाता ही है। किंतु ये भी चर्चा है शास्त्रों में, जहां निगोध है ना, ये निगोध प्रदेश, इस तलभाग में कोई निगोधी जीव है और वह निगोधी जीव तो सर्वत्र हैं, ठसाठस भरे हैं 3 लोक में, सूक्ष्म स्थावर कायिक जीव सर्वत्र भरे हुए हैं। तो एक निगोधी जीव यहाँ त्रियंश गति को बांधा, त्रियंश आयु को बांधा, त्रियंश गति को बांधा, किंतु कौन सी आयु बांधा? अंतर्मूर्त की आयु बांध लिया। तो बादर निगोधी है, अंतर्मूर्त की आयु को यहाँ बांध लिया और पुनः क्या बनना है? निगोधी शरीर में ही जन्म लेना है, निगोधी जीव ही बनना है। तो यहां से उसने आयु को बांध लिया और सिद्ध परमेष्ठी जहां रहते हैं यहां उसको जन्म लेना है। यदि वह सीधी गति से जाएगा तो 1 समय में जा सकता है। जीव की गति भी उतनी है और एक पुद्गल परमाणु की गति भी उतनी है। समय से कर जाना हो तो आप गाड़ी ढूंढते हैं, सिद्धालय जाना हो तो गाड़ी के बिना बहुत स्पीड से एक ही समय में आप जा सकते हैं। सिद्ध क्षेत्र के दर्शन के लिए तो कई दिन लगेंगे आने जाने में, और साक्षात सिद्धों का दर्शन करना हो तो निगोध गति का बंद करो और इशु गति से चले जाओ। इशु गति भी नहीं जा सकता, इशु गति से जा सकते हम, 1 समय में जा सकते हैं सिद्धालय में, साक्षात सिद्ध परमेष्ठियों का दर्शन, कहां क्षेत्रों का दर्शन करते हुए बैठे। त्रिंज आयु को बंद करो और साक्षात सिद्धों की आत्मा को स्पर्श करके आ जाओ और पुनः मनुष्य बन जाओ और बता दो सबको, हम तो साक्षात सिद्धों का दर्शन, अनंत सिद्धों का दर्शन करके आ गए। जीव के पास ये शक्ति है, अनंत शक्ति है जीव के पास। इसी शक्ति को पाने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए, दर्शन करते करते बहुत हो गया, अब स्वयं का दर्शन करोगे, सिद्ध बनोगे, तो सिद्धालय में ही जाकर अनंत काल तक वहीं पर बैठने का अवसर मिलेगा। इधर आना ही नहीं, सिद्धों के बीच में ही बैठना, बड़ा आनंद आएगा। सभी अनंत सिद्ध परमिष्ठ बैठे चारों ओर और आप भी उसमें एक बैठे हैं। वो किसी भजन में बोलते हैं शुद्धों से बातें करते हैं। अरे शुद्धों से बातें करते हैं, सिद्ध परमिष्ठ बोलते हैं क्या? शुद्धों से बातें करते हैं जब ध्यान में होते हैं मुनि महाराज, शुद्धों से बातें करते हैं। तो सिद्ध परमिष्ठ क्या ध्यान में ही हमको मिलने आते हैं क्या? हम अपनी आत्मा से बात करते हैं, क्या करते हैं? ये आत्मा तो सिद्ध भगवान है, सिद्ध क्यों नहीं बनता? हम सिद्धों से ही पूछते, हम अपने सिद्ध भगवान से पूछते हैं कि हे सिद्ध भगवान, तुम तो सिद्ध भगवान हो स्वभाव से, पर यहां क्यों बैठे हो? ऐसा क्या बन गया है? क्या अड़चन आ गया कि आप संसार में देहधारी बनने लगे? सिद्ध परमेश्वर तो देहधारी बनते नहीं और स्वभाव से तो आप सिद्ध हैं, फिर यहां क्यों नश्वर शरीर में क्यों बार बार कूदते हो, जंपिंग करते यहां के बाद वहां, वहां के बाद वहां, वहां के बाद वहां, जंप क्यों करते? ऐसा जंप मत करो, ये जंप करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। सभी कर्मों को नाश करो और तुम अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ जाओ, सिद्ध भगवान बन जाओ। और सिद्ध भगवान बन करके यहां तो रह नहीं सकते, स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन करके सिद्धों के बीच में जा पहुंचोगे, वहां पर जाओ और उनसे बातें करो, आनंद बहुत है वहां, अनंत सिद्ध परमेष्टि है, कितना अच्छा लगेगा। सारे सिद्ध भगवान बैठे, उन सिद्धों को पूछो हे सिद्ध परमेष्टियों, सबसे पहले तुम में से कौन आए यहां? वहां जाकर के पूछो तो सिद्ध परमेष्टि कहेंगे काय को पागल की बात करते हो, तुम कोल्हापुर में जब दूसरा पाठ पढ़ रहे थे अनादि निधन मंत्र का अर्थ पढ़े थे क्या? नहीं, मंत्र अनादि निधन है, कैसा है ये? अनादि से है, तो मंत्र जब अनादि है तो हम में से कौन पहले आए हैं, कौन बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा। एक एक सिद्ध परमिष्टि से आप पूछो, वो कहते हैं हमसे पहले भी यहां पर अनंत थे। बात करो सिद्धों से, वहां जाकर के सिद्ध बन करके ही बात करो। हर सिद्ध परमिष्टि से भी पूछोगे तो वो यही कहते हैं हम जब आए थे इससे पहले अनंत यहां थे। लास्ट वाले से भी पूछो तो वो भी कहते हैं हम जब यहां आए तो इधर अनंत बैठे थे और वहां पर जगह कहां से आती है सिद्धों को रहने के लिए, ये समस्या खड़ी मत करो। हाँ, इतने सारी आत्माएं मोक्ष जाती हैं तो वो क्षेत्र भर जाएगा तो कहां से लाएंगे, ये समस्या मत बनाओ। जैसे यहां समस्या बनाते हैं तो सभी दीक्षा लेंगे तो आहार कौन देगा, समस्या खड़ी कर देते हर जगह समस्या। सिद्धों मोक्ष जाने के बाद भी यही समस्या खड़ी करेंगे, हे सिद्ध भगवान वहां पर तो तुम लोग अनंत चले गए, जगह नहीं रही होगी, अब तो हम आएंगे नहीं। उसका भी हल आएगा। अवगाहना, एक आत्मा में अनंत आत्माएं मिल करके रह सकती, मिल करके कैसे? तो देखो, एक ग्लास पानी लो, प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, उदाहरण देना पड़ेगा समझ में आएगा। एक ग्लास पानी लो और उसमें एक ग्लास भरा हुआ पैक, दोनों समान ग्लास हैं, एक ग्लास राख ले लो, लर्राख, कंडे का राख, और थोड़ा थोड़ा राख उस पानी के अंदर डालते जाओ। पानी नीचे गिरेगा क्या? तो कभी करके देखा होगा आप लोगों ने। ये थोड़ा सा राख इसमें डालते डालते पूरा डाल दो तो भी एक बूंद भी पानी नीचे गिरने वाला नहीं है। तो पानी के परमाणु तो ठसाठस वहां भरे हैं पर कहीं भी जगह नहीं। और जगह कहां से बन गई राख को रहने के लिए? तो पुद्गल के पास भी एक दूसरे में अवगाहन देने की यदि शक्ति है तो ये तो जीव है, अमूर्त है। अमूर्त में तो और ही ज्यादा शक्ति होती है। पुद्गल ही जब आपस में अवगाहना देकर के पुद्गल परमाणु परस्पर में रह सकते हैं, एक ग्लास में दो ग्लास पुद्गल परमाणु रहने लगे तो जीव क्यों नहीं रह सकता? जीव भी रह सकता है। जैसे एक आत्मा मोक्ष चला गया यहां से, वृषभनाथ भगवान चले गए, वहीं बैठ करके अजितनाथ भगवान ने तप किया तो वो क्या सेकंड तीर्थंकर क्या बाजू में जाकर के बैठेंगे? और बाजू में जरा भी हिलता नहीं। आत्मा जब मोक्ष जाता है एक सेंटीमीटर भी इधर का उधर नहीं होता, सीधा सीधा एक सेंटीमीटर भी नहीं, बिल्कुल लाइन। जैसे ये टॉर्च का वो है ना रेखा, यहां से वहां तक भी जरा भी एक सेंटीमीटर भी इधर का उधर नहीं है, वो ऐसी लाइन है। इसको चांद की ओर वो करेंगे तो भी एक सेंटीमीटर भी इधर का उधर नहीं है, इतनी करेक्ट लाइन है किरण की। ऐसी ऐसे सिद्ध परमेश्वर जहां आटो कर्मों को नाश करते हैं सीधा चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहां जगह नहीं है इसलिए इधर आ गए और फिर ऐसा जी चले गए, जगह ढूंढने की जरूरत नहीं। वहां पर जो सिद्ध परमेश्वर बैठे हुए हैं, पहले गए हुए सिद्ध परमेश्वर, वो कहते हैं चिंता मत करो, इधर उधर मत जाओ, हम यहाँ हैं, स्वागत करते हैं, आ जाओ। कितने लोग आ रहे हैं? अनंत लोग आ रहे हैं, आ जाओ ना, कोई बात नहीं, जगह बहुत है यहाँ। तो वृषभनाथ भगवान अनंत सिद्ध परमेष्टियों को अपनी आत्मा में जगह दे देते हैं। एक आत्मा के भीतर अनंत सिद्ध परमात्मा रहने की जगह है, एक मेक होकर के रहते हैं। तुम्हारा जो घुल मिल जाएंगे तो घुल मिल नहीं जाएंगे, रहेंगे एक जगह। लेकिन जैसा पानी में नमक घोल दिया तो पानी खारा हो गया कि नहीं? खारा हो गया, घुल मिल गया, वो अपने अंश को पानी के परमाणु ने खींच लिया, लवण के अंश को, वो खारा बन गया। ऐसे सिद्ध परमेष्टि एक दूसरे घुल मिल गए, इसका अर्थ उनका ज्ञान इनमें आ गया, इनका ज्ञान उनमें चला गया और दोनों का केवल ज्ञान मिल करके बहुत बड़ा केवल ज्ञान हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका ज्ञान उनके पास रहेगा, उनके गुण उन्हीं के पास रहेंगे, इनके गुण उनमें नहीं जाएंगे, उनके गुण इनमें नहीं आएंगे, ऐसा रहेगा, ऐसा रहता है वहां। लेकिन रहने के लिए एक सिद्ध परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा नीचे मध्य लोक से ढाई द्वीप से कोई भी आ जाए तो वो अनंत को भी वो जगह देते, जगह देते। और आप लोग भी जब जाएंगे ना, आपकी व्यवस्था पहले से ही है, वो तो खड़े हैं सिद्ध परमात्मा स्वागत कर रहे हैं, बनो तो, त्याग तपस्या करो तो, यहां पर जगह बहुत है, आ जाओ कहते हैं। आप लोग जब जाएंगे ना वहां पर, जाने के पश्चात सभी सिद्ध परमेष्टियों को आप देखेंगे तो जहां आप बैठ रहे हैं सिद्ध भगवान बन करके, वहीं पर अनंत सिद्ध परमात्मा है। जहां जिस आत्मा में आप घुस गए हैं वहां वो एक ही नहीं है, वहां अनंत है। क्योंकि अनादिकाल से इतने ही क्षेत्र से मोक्ष जा रहे हैं, सिद्ध परमिष्टि, इतने ही प्रदेश है। और ये टोटल कितना क्षेत्र है, ये 45 लाख योजन का है, बहुत कम है। और मध्य लोक कितना बड़ा है, एक राज्य प्रमाण है, बहुत लंबा। उधर 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 ऐसा ही जाए तो भी कम नहीं, बहुत लंबा, एक राज्य ही इतना है। लेकिन एक राज्य प्रमाण मध्य लोक से सब जगह से मोक्ष होता नहीं, केवल ढाई द्वीप से ही मोक्ष होता है। वहां पर भी मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष होता है। विदेह क्षेत्र में जन्म लिया और त्रिरंच बन गए तो मोक्ष होगा क्या? विदेह क्षेत्र मिल जाएगा, समोह शरण मिल जाएगा, उपदेश मिल जाएगा त्रिरंच को भी, परंतु मोक्ष जाने का अधिकारी त्रिरंच नहीं हो सकता, मनुष्य ही होता है। तो यहीं से गए हैं इन क्षेत्रों से। अब यहां इतना क्षेत्र विदेह क्षेत्र, ये डमरू आकार का, यहां से कितने लोग मोक्ष गए हैं अनादिकाल से? अनंत अनंत गए हैं। तो प्रत्येक परमाणु परमाणु से अनंत अनंत गए हैं। कहीं भी आप वो करो, एक एक परमाणु से भी मोक्ष हुआ है। तो सोचो, जिस परमाणु से मोक्ष अनादिकाल से हुआ है, भविष्य में भी होने वाला है, तो वहां एक आत्मा में कितनी आत्माएं होंगी? अनंत। ऐसा स्थान आपको नहीं मिलेगा जहां पर संख्यात या असंख्यात सिद्ध परमिष्टि, एक सिद्ध परमिष्टि में सिद्ध परमिष्टि संख्यात हो या असंख्यात हो, ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा, अनंत ही मिलेंगे। जहां आप पहुंचेंगे ना, जब मोक्ष प्राप्त करेंगे तब की बात बता रहा हूं, जहां आप पहुंचेंगे वहां पर एक आत्मा जहां है, वहां अनंत सिद्ध परमात्माओं को आप स्वयं देखेंगे। आप अकेले रह ही नहीं सकेंगे वहां, आपको सेपरेट अलग से स्पेशल जगह मिल ही नहीं सकती। हाँ, यहां पंडाल में मिल सकती है, वहां नहीं चाहिए तो यहां बैठ सकती, लेकिन सिद्धालय में मिलने वाली नहीं है। आपको अनंतों के बीच में ही बैठना पड़ेगा। तो तकलीफ होगी क्या? भीड़ है इसलिए तकलीफ भी नहीं होगी। अनंत सुख में जरा भी कमी नहीं आएगी, अनंत सुखी ही रहेंगे। हाँ, सब मेरे में समा गए, हम सब में समा गए, ऐसा महसूस करेंगे। अब देखो महावीर भगवान कितने हाथ के ऊंचे थे, 7। आदिनाथ भगवान कितने हाथ के ऊंचे थे, 500 धनुष। आदिनाथ भगवान बैठकर मोक्ष गए क्या, खड़े होकर? पद्मासन से गए। महावीर भगवान खड्गासन से मोक्ष गए, खड्गासन। उनका शरीर कितना था आदिनाथ का? 500 धनुष। मतलब आत्मा थोड़ा कम, आत्मा उतनी ही रहेगी ना, तो पद्मासन से मोक्ष गए। वो बैठ करके भी यदि मोक्ष गए हैं तो कल्पना करो, महावीर भगवान खड़े होकर के मोक्ष गए, उसी स्थान से गए हैं मान लो, कल्पना करो, तो बैठने के बाद कितने ऊंचे थे आदिनाथ भगवान? उनका आत्मा का आकार वहां पर पद्मासन का बैठा हुआ ही मिलेगा, 250। हाँ, आधा बन जाएगा। हाँ, बैठ करके 3 फुट बनते हैं अपन, और खड़े हो तो 5 फुट बनते, 3 फुट नहीं बनते, थोड़ा कम बनते हैं, लगभग मान लो आधा, खड़े होने के आधे हिस्से पर हम रहते हैं। तो वृषभनाथ भगवान कितने धनुष के हो गए? 250 धनुष के हो गए, क्योंकि 500 के थे तो 250 के हो गए। महावीर भगवान 250 धनुष के थे क्या? 7 हाथ के थे, 7 हाथ के थे, तो कितने धनुष के थे? 1.5 धनुष के। आप सोचो, महावीर भगवान तो खड़े हैं मोक्ष गए, खड़े खड़े मोक्ष गए, और खड़े होने के बाद भी डेढ़ धनुष के हैं और वो बैठने के बाद भी अड़ी से धनुष के हैं और उनके आत्मा में ये चले गए तो कितने लगेंगे। आदिनाथ भगवान का जितना चेहरा था ना उतना भी नहीं क्योंकि उनका चेहरा भी सात हाथ से ज्यादा होगा, वो कहाँ रहेंगे ये ब्रह्मरंध्र है ना वहां जाकर इतने से लगेंगे, वो इतने से लगेंगे। और उन्हीं के पुत्र थे शुरुआत में, उन्हीं के पुत्र थे और अंतिम तीर्थंकर बन गए तो काया छोटी पड़ गई और ये उसी समय में मोक्ष गए। तो देखो मरीची पर्याय में अगर मोक्ष चले जाते उस समय पौत्र थे ममग थे वो क्या थे वो नाती थी, नाती थी, नाथ नातू 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 ने क्या किया, वृषभनाथ भगवान जन्म से ही सुगंध शरीर वाले थे, नातू ने नाथ तक नहीं लिया, बैठे ही नहीं, वो निकल ही गए, समूचन छोड़ दिया उन्होंने और मिथ्या वेश धारण करके मिथ्यात्व का प्रचार किया। रागी देवों का उपासक बन गया, मीतरागी परमात्मा का उपासक छोड़ दी, उपासना छोड़ दी और फिर मिथ्यात्व में आ गए। मिथ्यात्व करने के कारण से इतना घूमना पड़ा उनको, कितना, आदिनाथ भगवान के काल से लेकर अंतिम पार्श्वनाथ भगवान के बाद तक घूमना पड़ा। एक कोटा कोटि सागरोपम होता है चतुर्थ काल, 42,000 वर्ष कड़ी कम, एक कोटा कोटि उतने समय तक भटकना पड़ा, भटकना पड़ा। ये किस कारण से, अगर उसी समय में मोक्ष चले गए होते जहां आदिनाथ भगवान बैठकर तपस्या की थी तो इनकी भी ऊंचाई उतनी ही थी ना, उस समय चले जाते तो दोनों बराबर हो जाते, लेकिन लास्ट में चले गए तो अवसर्पणी काल के कारण से अवगाहना कम हो गई और उनका शरीर सात हाथ का था, अभी भी वो सात हाथ के ही है। तो आदिनाथ भगवान का जो ये मस्तक है ना उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अंदर अंदर जो मस्तिष्क की रचना होती है, आदिनाथ भगवान का मस्तिष्क बहुत बड़ा होगा और महावीर भगवान का मस्तिष्क तो बहुत छोटा सा रहा होगा क्योंकि उनका शरीर ही छोटा है, तो उतने आकार को धारण करके वहां रह रहे हैं। उस समय जाते तो बड़े होते सिद्ध परमिष्ठी, इस समय गए इसलिए छोटे सिद्ध परमिष्ठी बन गए। लेट नहीं करना चाहिए नहीं तो छोटे हो जाओगे। बड़े लोग बड़ा काम करते, छोटे लोग छोटा काम करते हैं और छोटा फल पाते। बड़े लोग बड़ा काम जल्दी काम करते हैं, जो जल्दी काम करते हैं वो बड़े माने जाते हैं और जो छोटा काम करते हैं वो छोटे, लेट काम करते हैं, जो लेट काम करते हैं वो लेट काम, लेट कर काम करते हैं लेट करके काम करते हैं, उनका काम जल्दी होता ही नहीं। क्या हो गया प्रवचन में, क्यों लेट हो गया, लेट कर आए दोपहर को लेट कर आए इसलिए लेट आए, घर में लेट आए इसलिए यहां लेट आए बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, धर्म करने के लिए कभी भी लेट नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन धर्म प्रथम है, उसको तत्काल धारण करना चाहिए। कहां किसकी ओर देख रहे हैं, कहां भटक रहे हैं? आपने आत्मा को सुधारो, आत्म कल्याण के बारे में सोचो। धर्म धारण में आत्म कल्याण है और आत्म कल्याण कहीं भी नहीं है। ये समझ में आ गया? ये तो है वो भरत क्षेत्र, अब ये भोग भूमि में दिखा दिया, काट करके रखा है, वैसे वहां नहीं है, एनलार्ज करके दिखाया है। ये कौन सा है? नंदीश्वर द्वीप। देखो इसमें सभी दिखाया है, बीचों बीच जम्बो द्वीप, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप द्वीप, आठ दिखाया, आठवें नंबर में इसका नंबर आया। तो ये नंदीश्वर द्वीप, यहां पर मनुष्य जा नहीं सकता। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, आठवें नंबर में जो द्वीप है ना, वो वहां दिखाया है, ये आठवें नंबर का द्वीप है। इसका नाम नंदीश्वर द्वीप। आप लोग अष्टानिका में जो पूजा करते हैं अकृत्रिम चैतालयों की, कितनी प्रतिमाएं हैं वह अकृत्रिम, 52 52 चैतालयों की पूजा करते हैं ना, वो यहाँ 52 कैसे हो जाते हैं तो यहाँ बताया। देखो इधर 13 इधर 13 इधर 13 इधर 13 ऐसे मंदिर हैं। उन मंदिरों में रत्नमय प्रतिमाएं हैं और बड़ी बड़ी रत्नमय प्रतिमाएं हैं, उनकी पूजा करने के लिए इंद्र, स्वर्ग का इंद्र वैमानिक देवों के साथ वह वे पूजा करने के लिए नंदीश्वर द्वीप में पहुंचते। हर अष्टानिका में एक साल में कितनी अष्टानिकाएं आती हैं? 3 अष्टानिका, 3 बार पहुंचते हैं वहां। 3 बार पहुंच करके वैभव के साथ संगीतमय, जैसे आप सिद्ध परमिष्टि सिद्ध चक्र विधान वगैरह करते हैं, संगीतमय पंचकल्याणक वगैरह होता है ना, ऐसे वैभव से देव लोग वहां जाकर पूजन करते हैं। इंद्रध्वज भी करता जो होता है, तो इंद्र देवता पूजन करने के वास्ते वर्ष में 3 बार जाते हैं देवों को लेकर। वहां पर देवों की भीड़ ही भीड़ रहती है उस समय। देवगति में आप जन्म लेंगे तो केवल पूजा एक ही धर्म रह जाता है, वहां कुछ और कर नहीं सकते। देखो संयम धारण नहीं कर सकते, संयम धारण कर सकते हो क्या? नहीं। संयम धारण कौन कर सकता है? मनुष्य। मनुष्य में त्रिंश भी कर सकता है, एक देश अनुवृत ग्रह धारण कर सकता है, मनुष्य भी अनुवृत धारण कर सकता है, महावृत भी धारण कर सकता है। तो मनुष्य गति जो अपने को मिली है ये संयम साधने के लिए मिली है। सम्यक तो साधना तो हमको हमारे लिए सरल है, पर संयम दुर्लभ है हमारे लिए। मनुष्य जीवन जो मिलता है संयम के लिए मिलता है। सम्यक तो इतना महत्वपूर्ण नहीं, आपको सम्यक तो प्राप्त करना ही चाहिए। सम्यक तो ही आपका धर्म नहीं है, सम्यक्त्व के बाद संयम आपका मुख्य धर्म है। हमारा मुख्य धर्म संयम है, परंतु वो सम्यक्त्व के साथ में ही होना चाहिए, बात अलग है। देवों का धर्म मुख्य क्या है? नहीं, सम्यक्त्व होता है नहीं, होता है कि नहीं? वहां होता है, सम्यक दर्शन नहीं होता देवों को, होता है, संयम नहीं होता। तो जो होता नहीं उसकी बात ही नहीं होती, जो होता है उनके लिए वही मुख्य है। तो देव लोग संयम धारण नहीं कर सकते, सम्यक दर्शन धारण कर सकते हैं। सम्यक दर्शन धारण करके उसमें विशुद्धि बढ़ाने के लिए, सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने के लिए भगवान की, अरहंत भगवान की प्रतिमाओं का पूजन करते हैं वो। ये पूजन धर्म वस्तुतः देखा जाए देवों का धर्म है, और देवों का ही देख देख करके अपन ने सीखा है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य संयम धारण करने के लिए असमर्थ रहा, उन्होंने कहा फिर हम क्या करें, तो देवों की तरह हम भी जरा पूजा करें। देखो, देवों की तरह हम भी जरा पूजा करें, क्योंकि संयम तो इधर ले नहीं सक रहे हैं, संयमी नहीं बन पा रहे हैं, न देश संयम हो रहा है, न महाव्रत हो रहा है, तो हम क्या करें, हम पूजा करें थोड़ा बहुत। तो मनुष्य ने देवों की उस भक्ति को देख करके स्वयं भी भक्ति करना सीख गया। किंतु मनुष्य को पूजन करना जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? जो मनुष्य पूजन करता है वही संयम धारण कर सकता है, ऐसा कोई शर्त है? जिस मनुष्य ने, सुनो क्या कह रहे हैं, अभिप्राय समझ लो, मनुष्य को यदि संयम धारण करने के भाव हो गए, तो पूजन जिसने किया है उसी के लिए परमिशन है क्या? मुनि दीक्षा लेने का परमिशन उन्हीं को है क्या? ऐसा नहीं है। तो ये मनुष्य पर्याय क्यों मिली? हाँ, डायरेक्ट जो काम कर सकता है वो करना चाहिए। नीचे के काम करते हुए क्यों बैठे हो, छोटे छोटे काम? पूजन जरूरी नहीं है मनुष्य को, मनुष्य को तो सीधा संयम पर पहुंचना चाहिए। मुनि महाराज कहाँ पूजन करते हैं? नहीं करते। भाव पूजा है कहाँ, इधर उधर जाकर के, भगवान के पास जाकर के, मंदिर में जाकर के कहाँ पूजन करने? द्रव्य पूजन है क्या उनको? नहीं है, भाव पूजन है। द्रव्य पूजन षड आवश्यक में नहीं है। नहीं, भाव पूजन है, भाव पूजन है, षड आवश्यक में द्रव्य पूजन नहीं है। नहीं, सुनो तो, सुनो क्या अभिप्राय हम बता रहे हैं, वहां तक पहुंचो। द्रव्य पूजन मुनियों को षड आवश्यक में नहीं है, भाव पूजन जरूर है षड आवश्यक में। वंदना, स्तुति, सामायिक वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये षट आवश्यक क्रियाएं। स्तुति क्या चीज है? मुनि महाराज स्तुति पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, भक्ति करते हैं कि नहीं करते भगवान की? तो ये भाव पूजा हो गई। भाव पूजा यानी हाथ जोड़ना, भक्ति करना, किसी भी बाह्य द्रव्यों के आलंबन के बिना भक्ति करना, ये है मुनियों का भाव पूजन। अब इनका द्रव्य पूजन अलग है। द्रव्य पूजन का अर्थ क्या है देख लो, एक बार बताता हूँ। द्रव्य पूजन का अर्थ है पर द्रव्य का आलंबन लेकर पूजा करने का नाम, भक्ति करने का नाम या स्तुति करने का नाम द्रव्य पूजा है। तो मुनि महाराज का द्रव्य पूजन अलग है, द्रव्य पूजन भी वो करते हैं, परंतु आप जैसे द्रव्य जुटा करके नहीं, चावल लाओ, जल लाओ, वो लाओ, ये लाओ, सामान जुटा दिया। मुनि महाराज को सामान जुटाने को नहीं कहा, हाथ को जुटाओ, ये परद्रव्य है क्या? नहीं। तो इस परद्रव्य से ऐसा हाथ जोड़ रहे हैं तो भक्ति की मुद्रा हो गई, नमस्कार किया तो विनय पूर्वक नमस्तु हो गया, तो ये द्रव्य पूजन हो गया। इस प्रकार का द्रव्य पूजन मुनियों को है। परद्रव्येन पूजयति इति द्रव्य पूजा, जो पर द्रव्य के द्वारा पूजा जाए वह द्रव्य पूजा। आप लोग पूजन करते हैं द्रव्य पूजन, परंतु द्रव्य पूजन डबल तरीके से करते हैं। हम एक ही तरीके से करते हैं, हाथ जोड़ते हो क्या? नहीं, रूपामी तो स्वाहा, देखो ये भी डाल दिया और ये भी आलंबन ले, दो का आलंबन ले लिया, पर द्रव्य का भी आलंबन ले लिया और इस शरीर का भी आलंबन ले लिया। ये भी परद्रव्य है, वो भी परद्रव्य है। मुनि की द्रव्य पूजा शरीर परद्रव्य से होती है। और श्रावकों की द्रव्य पूजा शरीर के माध्यम से भी होती है और अष्ट द्रव्यों से भी होती है। तो ये हम ये बता रहे थे, ये आठ द्रव्यों को जुटाना और पूजन करना ये कब से आया, इसका इतिहास आपको देखना पड़ेगा, बहुत खोजना पड़ेगा। प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी इन इन द्रव्यों को लेकर के पूजन करो ऐसा श्रावक के लिए तो उपदेश नहीं है। क्या बताया, क्या बताया, सुनो तो सही, सुनो। श्रावकाचार जितने भी हैं प्राचीन श्रावकाचार, उन श्रावकाचार ग्रंथों में श्रावक को किन द्रव्यों को लेकर के जुटा करके संग्रह करके पूजन करना चाहिए, उन श्रावकाचार ग्रंथों में कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि जल जुटाओ, वो जुटाओ, अक्षत जुटाओ, श्रीफल जुटाओ, फिर उनके उनको अर्पण करो, ये पूजा करो। श्रावक के लिए उपदेश नहीं दिया। तो क्या दिया है, कुंदकुंद स्वामी ने अपने भक्ति के ग्रंथों में, कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ भी लिखा है, उसमें श्रावकाचार भी है और मुनियों का आचार भी समझाया गया है। अष्टपाहुड़ में कहीं भी ये चर्चा नहीं है कि ये आठ द्रव्य लेना चाहिए श्रावक को और इन आठ द्रव्यों से पूजन करना चाहिए, एक भी द्रव्य का नाम नहीं लिया। किंतु वो जब भक्ति लिखते हैं, वो दशभक्ति भक्ति लिखते हैं, तो नंदीश्वर भक्ति लिखते समय उन्होंने दिव्येन गंधेन दिव्येन पुष्पेन वासेन पूजन्ति नमोसन्ति ऐसा जो वर्णन आता है वो देवों का वर्णन है, मनुष्यों को ये करना चाहिए ऐसा उपदेश नहीं। देव किस प्रकार के द्रव्यों से पूजन करते हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। रहते हैं ना, दोनों दोनों प्रकार के देव रहते हैं, सम्यक तो सहित भी और सम्यक तो रहित भी। हाँ जाते हैं ना, इंद्र के साथ, इंद्र की आज्ञा होती है और वो रह नहीं सकता। हाँ परिणाम मिथ्या तो हो करके भी वे इंद्र के आज्ञा के कारण साथ चलते हैं, साथ चले जाते हैं और वहां जाने के बाद इंद्र की इंद्र का उस दिव्य पूजन वगैरह विधि देख करके इंद्र भगवान के चरणों में झुक रहा है, भक्ति कर रहा है, उसको लगता है अरे इंद्र झुक रहा है यहाँ मेरे से बड़ा, तो ये कोई महान है, तो ये कौन है चर्चा हो जाती है, ये भगवान है, इनकी पूजा करने से हमारा कल्याण होता है, ये बात समझ में आ जाती है वहां मिथ्यादृष्टि देवों को। और फिर मिथ्यादृष्टि देव अरहंत प्रतिमा का दर्शन करते करते सम्यक दृष्टि बन जाते, वहां पर भी दर्शन निमित्त है और वो सम्यक दृष्टि बन जाए तो अपने आप में पश्चाताप करते हैं, देखो इंद्र जिसकी पूजा करता है उस पूजा को मैंने एक बार भी नहीं किया कभी, और मैं अनादिकाल से भटकता रहा, इसलिए मैं इंद्र से नीचे हूँ और इंद्र मेरे से ऊपर है, ये सम्यक दर्शन का फल है, एक जान करके वह सम्यक दृष्टि बन जाता है, धर्म पर आस्था जग जाती है। देवगति में सम्यक दृष्टि देव भी हैं और मिथ्या दृष्टि देव। हम क्या कह रहे थे, प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी श्रावक को आठ द्रव्यों से पूजा करना चाहिए ये उपदेश नहीं है, एक भी श्लोक एक भी गाथा नहीं मिलती। और फिर ये आठ द्रव्यों से पूजा करना कब से प्रारंभ हो गया, तो कालांतर में हो गया, प्राचीन ग्रंथ बहुत सारे लिखे गए, कालांतर में ये पद्धति चली आई। तो कब से आई, तो श्रावकाचार संग्रह पांच ग्रंथ बने, पांच पांच भाग हैं, श्रावकाचार संग्रह सोलापुर से प्रकाशित हैं, उसमें 35 श्रावकाचारों का संग्रह किया है। पहली शताब्दी से लेकर अब तक के 21वीं शताब्दी तक किस किस ने कितने श्रावकाचार लिखे, उन सबको कलेक्ट किया, संग्रह किया, और वो संस्कृत में थे, प्राकृत में थे, भाषा अलग अलग थी, उनको हिंदी में अनुवाद किया। उस सबको अनुवाद करके, सबका छानबीन करके, किस श्रावकाचार में क्या क्या आया, क्या क्या नहीं आया, कब कौन सी चीज थी, कौन सी चीज नहीं थी, इसकी समीक्षात्मक एक प्रस्तावना लिखी है विद्वानों ने। उस प्रस्तावना को अवश्य पढ़ना चाहिए और उसको प्रकाश में भी लाना चाहिए। श्रावकाचार संग्रह चौथा भाग में एक प्रस्तावना है जो 35 श्रावकाचारों की समीक्षा उसके अंदर मिलती है। क्रमवाइज पहली शताब्दी में किसने क्या कहा, एक एक विषय को क्लियर किया है, अभिषेक के विषय में, पूजन के विषय में, भक्षाभक्ष पदार्थों के विषय में, मूल गुणों के विषय में, अनुव्रतों के विषय में, शिक्षाव्रतों के विषय में, गुणव्रतों के विषय में, हर चीज श्रावक के। प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं, अर्वाचीन ग्रंथ क्या कहते हैं, कब किस काल में कौन सी चीज आई, नई चीज शुरू हो गई, ये भी लिखा है। तो उस श्रावकाचार प्रस्तावना को एक बार अवश्य आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, प्राचीन काल में श्रावक धर्म का स्वरूप क्या था और आज क्या है, ये समझ में आएगा। अपन को प्राचीन काल के अनुसार करना है या नई नई अपनी तरफ से करते जाना है, क्या करना है? चतुर्थ काल में जैसा धर्म था वैसा धर्म चाहिए क्या, अपनी तरफ से नवीन नवीन ऐड किया हुआ चाहिए? कौन सा चाहिए? कल्याण किससे होना है? अपने तरफ से कुछ करते हैं तो कल्याण होगा क्या है? हाँ, इसको पढ़ने के लिए आपको अवश्य उसमें मिलेगा, एक बार अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए। श्रावकाचार संग्रह चौथा भाग, उसने 35 श्रावकाचारों का सब समीक्षात्मक एक बड़ी प्रस्तावना लिखी जो 71 पेज की है, 171 पेज की, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें ये लिखा है, हम ये बता रहे थे, द्रव्य पूजन और भाव पूजन करने, द्रव्य पूजन करने की पद्धति, जो 8 द्रव्यों से पूजा जाता है ना, ये पद्धति विशेष रूप से 10वीं-11वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गई। पहले क्या करते थे, पहले भी द्रव्य पूजन था, कैसे करते थे, भगवान के पास कोई जाते तो कोई एक चीज लेकर के चले जाते, और जा करके किसी ने चांदी के फूल चढ़ाए, सोने के फूल चढ़ाए, मोती चढ़ाया, नमस्कार किया, भक्ति किया, लौट आए। गिनती नहीं थी, श्रीफल ले चलो, अक्षत ले चलो, 8 द्रव्यों की गिनती नहीं थी। भगवान के पास जाते समय खाली हाथ नहीं जाते थे, बस ये था। तो कोई एक वस्तु साथ में लेकर चलते थे जो मूल्यवान है, उसको चढ़ा करके नमस्कार करते थे, भक्ति करते थे, इतना था। 8 द्रव्यों को जुटा करके व्यवस्थित रूप से और विधिवत पूजन करने की जो पद्धति शुरू हो गई वो 10वीं-11वीं शताब्दी से शुरू हुई, ऐसा इतिहास बताता है। ये है इतिहास। तो उसमें भी अब ये विचार करना चाहिए। फिर ये द्रव्य पूजन का अनुसरण जो हुआ किसको देख करके हुआ, तो देवों को देख करके हुआ। ये तो पढ़ने में आ रहा था 1000 साल पहले भी 10वीं शताब्दी के लोगों को, कि दिव्येन गंधेन दिव्येन पुप्येन, वो भी पढ़ते थे। कुंद कुंद स्वामी का साहित्य उनके सामने में भी था, तो वो पढ़ते समय सोचा होगा कि देव लोग इतने द्रव्यों को जुटा करके करते हैं तो हम भी कर ले क्या, चलो करते, अक्षत जुटा लेते, पानी जुटा लेते, फल जुटा लेते, धूप दीप जुटा लेते, तो ये सब जुटा करके करने का पद्धति शुरू हो गई। परंतु ये पद्धति ही सर्वोपरि जैन धर्म है और उसके बिना तो धर्म ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। द्रव्य एक माध्यम होता है मन को टिकाने के लिए, बस इतना है। द्रव्य एक अवलंबन होता है मन को एकाग्र करने के लिए, पर द्रव्य ही धर्म है क्या? द्रव्य के बिना भी पूजन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कैसे करेंगे? भाव से करेंगे। क्या बोलेंगे? अरे भक्तामर पाठ इतना लंबा चौड़ा है, उसको बोलने के लिए 10-20 मिनट तो लगते ही है, बैठ करके आप भक्तामर का पाठ करेंगे तो क्या गलत हो गया कि द्रव्य चढ़ाना ही अनिवार्य है, ऐसा कोई नियम है? दोनों कर सकते हैं। जब द्रव्य को मन इच्छा करता है कि द्रव्य से करना है, द्रव्य से कर लिया। मन इच्छा नहीं करता केवल भक्ति करना है, भक्ति कर लिया। पूजन क्या है, किस लिए है, उद्देश्य क्या है उसका? पूजन करके हम क्या पाना चाहते? भावों को शुभ बनाना है, तो क्या भाव पूजन करेंगे तो शुभ नहीं बनेंगे? त्याग करना हो तो घर त्याग करो। त्याग करने के लिए तो ऐसा सोचो कि किसी को दान दो, वो त्याग हो गया है। तो किसी को दान देंगे तो बहुत अच्छा त्याग होगा, उसका भी उपकार होगा उस त्याग से, और हमारा भी उपकार हो गया, हमारे कर्म धुल गए। थोड़ा सा चावल चढ़ाने से कौन सा त्याग हो गया? ये त्याग की वस्तु नहीं, ये प्रतीक बना करके हम ले गए हैं। प्रतीक का मतलब, ये अक्षत क्यों लिया है? अक्षय सुख पाने के लिए थोड़ा सा अक्षत प्रतीक के रूप में ले लिया है, क्योंकि मन इधर उधर न भटके, घर न जाए, वो मन गड़बड़ है, वो टिके तो द्रव्य में टिके या तो भगवान के गुणों में टिके, अक्षय पद में टिके या तो अक्षत में टिके, इसलिए प्रतीक के रूप, प्रतीक के लिए लिया है। ये त्याग की वस्तु है ही नहीं, प्रतीक बना करके लाए हैं। अब ये अर्पित कर रहे हैं तो किसको अर्पित कर रहे हैं? किसको अर्पित कर रहे हैं? भगवान को। तुमने अर्पित कर दिया, भगवान ने गोला करके ले लिया। जिसको अर्पित करते हैं वो गोला भी नहीं करते है? भगवान देखते भी नहीं, हाँ नासिका दृष्टि से बैठे, वो केवल ज्ञान में सब देख रहे हैं। आप किसको अर्पण कर रहे हैं? हमारे लिए। हाँ ठीक, तुम करते रहो अर्पित, हमको क्या मतलब उस द्रव्य से? भगवान को तो कोई मतलब नहीं। तुम सोने की चीजें चढ़ाओ, मोती चढ़ाओ तो भी भगवान उस तरफ देखेंगे नहीं है। तो मोती क्यों चढ़ा रहे हैं? आत्मा को मोती बनाने के लिए। अर्पित किसको कर रहे हैं हम? अपने आप को समर्पित करने के लिए अर्पित कर रहे हैं, अपने आत्मा को मुक्त करने के उद्देश्य से ये प्रतीक वहां पर छोड़ा जा रहा है। स्वाहा कहते हैं, ये स्वाहा क्या चीज है? मैं छोड़ देता हूं, त्याग करता हूं, ऐसा नहीं। पूजन त्याग की वस्तु नहीं है, त्याग है। जैन व्यक्ति, जैन श्रावक ऐसा त्याग नहीं करता। त्याग के दो ही माध्यम बताए हैं, या तो अनुवृत्ति बनो, त्याग करो परिग्रह का, या तो दान दो, त्याग हो जाएगा, या तो अनुवृत्ति बनो या तो महावृत्ति बनो, तीन रास्ते हैं। पूजन करो, ये त्याग की कोटि में नहीं लिया। दान देते हैं, दान देते हैं तो उस वस्तु को कोई लेता भी है और उपयोग भी करता, ये धर्म है। किंतु पूजन कर देते हैं, पूजन कर लेते हैं और वस्तु को सुहा करके छोड़ देते हैं, तो उस वस्तु को, सुनो सुनो, उस वस्तु को, उस वस्तु को, उस त्याग की वस्तु है क्या वो? नहीं, पूजन करके छोड़ी हुई वस्तु है, विसर्जित वस्तु है वो। त्याग की वस्तु विसर्जित वस्तु नहीं होती, दान की वस्तु विसर्जित वस्तु नहीं होती। त्याग तो यूं मोह हटाया जाता है, इसका नाम त्याग। जब दीक्षा लेते हैं तो दान में देते हैं क्या? तो त्याग का मतलब क्या? स्वाहा किया क्या? तो पूजन की वस्तु भी नहीं है। त्याग अलग है, पूजन के काल में छोड़ने वाली वस्तु अलग है, दान अलग है। दान क्या चीज है? दान तो स्व और पर के उपकार के लिए दिया जाता है, दान त्याग नहीं कहलाता, और त्याग दान नहीं कहलाता। जब घर को त्यागा जाता है तो ये त्याग है। तो घर को दान में दे दिया क्या? हाँ? किसको दान में दिया? दान नहीं दिया जाता है, उसको भूल दिया जाता है। परिग्रह को भूलकर, मोह हटाकर सिर्फ निकल करके जाना होता है। त्याग की हुई वस्तु वहीं पड़ी रहती है, त्याग की हुई वस्तु वहीं पड़ी रहती है, मोह हटा करके आप निकल जाते हैं। दान जो होता है वह अपने परिग्रह में से कुछ का देना, ये दान है। त्याग ऐसा नहीं है, त्याग सो दान नहीं, त्याग सो दान नहीं। त्याग सब कुछ छोड़ करके, यानी उससे मोह छोड़ करके निकल करके जाना होता है। त्याग दीक्षा के लिए होता है, दान दीक्षा के लिए नहीं होता। दान की वस्तु उपकार के लिए होता है, दान देने वाला दीक्षा नहीं लेता। आप लोग रोज रोज दान दे रहे हैं, क्या दीक्षा ले रहे हैं? तो दान की वस्तु दान में जा रही है, ये दान की वस्तु है, ये त्याग की वस्तु नहीं। लेकिन जब आप त्याग करेंगे ना, आप दान नहीं दे सकते। जब त्याग करेंगे ना, दान नहीं दे सकते, और दान का विकल्प भी आप नहीं करते कि मैं इसी को किसी को दे दूं, ऐसा विकल्प नहीं आता। आपको वैराग्य हो गया तो ये 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं, इससे ममत्व हटा लेते हैं और बिना कहे बिना पूछे ही आप निकल जाते हैं। इसका नाम त्याग है। त्याग जो होता है वो दीक्षा के लिए, त्याग जो होता है वो संपूर्ण परिग्रह से दूर होने के लिए त्याग होता है। दान, दान विद्यमान वस्तु में से कुछ जिसका उपकार हो सकता हो उनको देना, ये दान हो गया। हाँ, त्याग में एक ही रहता है। बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ गया। अब एक एक अकेले कब बनोगे बोलो? त्याग करते समय व्यक्ति अकेला होता है, दान करते समय जो दान देता है ना, वो दान दाता जिसको दान देना है उसकी प्रतीक्षा में रहता है कि मैं किसी को दूं, सत्पात्र की प्रतीक्षा करता है, ढूंढता है सत्पात्रों को, प्रतीक्षा में रहता है, फिर दान देता है। मिल गए तो दान देता है और अहोभाग्य समझता है। क्यों समझता है? मैं दान देने के लिए मैं किसी को ढूंढ रहा था, इसलिए ढूंढ रहा था, दान धर्म मेरा मुख्य धर्म है गृहस्थ का, अगर मैं दान नहीं देता है तो मेरा धर्म हो ही नहीं सकता था, मैं अधर्मात्मा कहलाता। आचरण में दान ये श्रावक का मुख्य धर्म है, क्योंकि उस दान के कारण से ही साक्षात रत्नत्रयधारी मुनि महाराज का यह रत्नत्रय तीर्थ आज जीवित है। तीर्थ कैसे जीवित है, त्याग से या दान से? आप त्याग करके आप भी मुनि बन जाते तो दान कौन देने वाला? सभी लोग त्याग त्याग करके मुनि बन जाते तो दान कौन देने वाला? दान कितना महत्वपूर्ण है, वो साक्षात जैन धर्म की मूर्ति मुनि दिगंबर मुनि रत्नत्रय के धारी उस रत्नत्रय रूपी धर्म को टिकाने में ये दान श्रावक का महान धर्म कहलाता है, महाधर्म है वो। श्रावक दान देते समय जो कर्मों की निर्जरा करता है वह सामायिक करते समय में भी नहीं कर सकता। नहीं समझे? सामायिक करते समय में भी नहीं कर सकता। आचार्य ने कई बार इस बात को बताया प्रवचनों के माध्यम से। ऐसा क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि देखो, दान देते समय आप सत्पात्र को दान दे रहे हैं और सत्पात्र उसको ले रहे हैं। साक्षात धर्म की मूर्ति सामने खड़ी है, साक्षात आप धर्म को जीवित कर रहे हैं दान देकर, जीवित कर रहे हैं। जैसे आप बीमार पड़ गए हैं, मूर्छित हो गए हैं और आपको डॉक्टर ने बोतल चढ़ा दिया तो क्या काम कर रहा है? आपको जीवित कर रहा। मूर्छित हो गए हैं, आपको वह जीवित कर रहा। श्रावक रत्नत्रय रूपी धर्म को जीवित करता है, ये उनका दान उसके समान है। बोतल चढ़ाई उसको क्या बोलते? सलाइन। हाँ, सलाइन, सलाइन के समान है ये। सलाइन, सलाइन मिलते ही उठ बैठते हैं रत्नत्रयधारी। तीर्थंकरों को भी सलाइन लेना पड़ा ये। हाँ, श्रावकों का कर्तव्य है। उन षटकर्मों में भी सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा, कर्म कौन सा है? दान है। देव पूजा से भी श्रेष्ठ, आपके तप से भी श्रेष्ठ, सामायिक से भी श्रेष्ठ। देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये दान किसके लिए हो रहा है? गुरु के लिए। गुरु की उपासना का मतलब क्या? दान भी गुरु की उपासना है, ये ठीक है, लेकिन गुरु की उपासना केवल दान से ही नहीं होता। गुरु पास्ते यानी गुरु पूजा, देव पूजा की है तो गुरु की भी उपासना करो। क्यों उपासना करो, क्यों भक्ति करो, क्यों पूजन करो? इसलिए कि आप भी रत्नत्रयधारी बनने का प्रयत्न करो। पूजा से क्या शिक्षा मिलती है? हम भी रत्नत्रयधारी बने, ये शिक्षा मिलती है। ऐसी शिक्षा के कारण से श्रावक गुरु की उपासना यानी भक्ति करता है। लेकिन दान देते समय जिसकी भक्ति की है वो अगर आहार के लिए निकले हैं तो पहले से ही प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि हमारे द्वार पर कोई आ जाए और हमारा यह जो परिग्रह है, दान की वस्तु है, यह सुपात्र में लग करके वह धर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाए, धर्म की रक्षा में लग जाए और मेरा जीवन जो सांसारिक है, कर्म बंधों में लिप्त है, ये कर्म, बंधे हुए कर्म धुल जाते हैं। किस समय? आहार दान देते समय। बताया ना कि सामायिक में जितने कर्मों की निर्जरा आपकी नहीं हो सकती, उतने दान में कर्म की निर्जरा होती है। हाँ, चारों दान कौन कौन से? हाँ ठीक है, ठीक, दान की वस्तुओं का नाम हो गया ये। हाँ ठीक है ना, आहार दान देने पर सभी दान मिलता है का मतलब? नहीं नहीं ऐसा नहीं लो, औषधि अलग है, आहार अलग है, आवास अलग है। आहार दे दिया तो क्या आवास दे दिया? शुदा या रोग है, आहार कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, कैसे अर्थ लगा रहे हैं? भाव संग्रह में क्या लिखा है? एक आहार दान में कैसे? नहीं ऐसा नहीं, तो फिर ऐसा मत समझो कि एक आहार दान दे दिया तो मुनि महाराज को रहने के लिए स्थान नहीं देना, उसमें चारों आ गए, वो कहीं भी जाएं, कहाँ बैठेंगे वो, कहाँ जाएंगे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ और कहा होगा। आहार दे करके अपने को आवास दान भी देना पड़ेगा, रहने के लिए स्थान देना। शास्त्र दान, हाँ, चारों कैसे गठित करेंगे? हो गया, औषधि तो देखो, आहार ही जब औषधि बनेगी तो औषधि दान वही है, फिर वही आहार भी है, क्योंकि उससे भूख भी मिट गई, और आहार से ही अगर रोग निवारण हो गया तो उस विधि का ही, उस पद्धति का ही आहार दे दिया तो रोग भी निवारण हो गया। जिस आहार से रोग भी ठीक हो सकता हो, वह आहार आहार भी है और औषधि भी है, ये ठीक है। शास्त्र दान हाँ वो साध्य कर सकते हैं, तो शास्त्र दान हो गया, आहार दान दे दिया और उनको शास्त्र तो दिया नहीं, और वो तो क्या पढ़ेंगे, कोई शास्त्र भी तो देना पड़ेगा। उपकरण देखो, दान के चार भेद हैं, रत्नगढ़ श्रावकाचार में जो बताए गए चार भेद हैं, दान की वस्तु हैं वो चार हैं, आहार दान, औषधि दान, नहीं अभय दान नहीं है उसमें, आवास दान, आहार औषधि आवास और उपकरण। उपकरण उपकरण दान का मतलब इसमें पिंची कमंडलू शास्त्र ये आ गया, उपकरण दान, उपकरण तीन उपकरण, पिंची कमंडलू और शास्त्र। आहार दान दे दिया तो शास्त्र दान कैसे होगा, उपकरण दान कैसे हो गया? वो उपदेश देंगे इसलिए तो फिर शास्त्र दान तो कभी देना ही नहीं चाहिए महाराज को, आहार दे दिया तो चारों आ गए महाराज जाओ हाँ चारों का फल कैसे मिलेगा, अलग से शास्त्र नहीं दिया तो चारों का कैसे मिलेगा? जैसे आहार दान आपने दे दिया तो हम यहाँ पर आ करके पढ़ना चाहते हैं, शास्त्र नहीं है तो कैसे ज्ञानार्जन करेंगे हम, नहीं हो सकता, तो चारों का फल कैसे मिलेगा? शास्त्र देंगे तो ही शास्त्र दान का फल मिलेगा, आहार देंगे तो ये हम कह सकते हैं कि आहार का भी फल मिलेगा और औषधि दान का भी फल मिलेगा, क्योंकि आहार ही ऐसा दिया है जो औषधि का भी काम कर सके और भूख निवारण का भी काम कर सके, ये ठीक है। इसमें एक दूसरे में आरोप हो सकता है, शास्त्र का आरोप कैसे करेंगे? उपकरण उपकरण है, वो आहार की कोटि में नहीं आएगा। हाँ हम्म, देखो दान सुपात्र को दिया जाता है, हर किसी को नहीं। सुनो सुनो सुनो, व्यत्यास ये अंतर समझ लो। सुपात्र को दान, दान का जो पात्र है वो सुपात्र है। अब शेष जो जीव दुखी हैं उनके लिए करुणादान बताए, करुणादान अभय दान भी बोल सकते हैं इसको, करुणादान अभय दान एक ही बात है, वो अलग हैं। पड़ोसी में जो दुखी हैं वो पात्र ना हो तो करुणादान के पात्र हैं, वो करुणादान के पात्र। किंतु दान जिसको देते हैं हम धर्म समझकर, धर्मात्मा बनकर, षटकर्म में दान जो कहा गया है वो सुपात्रों का उद्देश्य बना करके कहा है। और करुणादान जो बताया है ना, वो जहां कहीं भी जब भी जिस अवस्था में भी कोई दुखी जीव मिला तो उसके दुख को देख करके अपने मन में पीड़ा होनी चाहिए। हाँ ठीक है, जीवंधर कुमार ने जो अभय दान दे दिया, नमोकार मंत्र सुनाया, देवगति को प्राप्त हो गया, को सुपात्र नहीं था, दुखी जीव था, करुणा दान दिया, सुपात्र नहीं था वो, किसी ने मार करके भगा दिया था, दुखी था, तो जीवंधर सम्यक दृष्टि थे, उसको देख करके दया आई और उसने नमोकार मंत्र सुनाया, कुछ पानी भी पिलाया हो, इसमें कोई संदेह नहीं, पिला सकता है, आवश्यक वस्तु दे भी दिया हो, परंतु वो पात्र दान नहीं कहलाता। सुपात्र दान अलग है और करुणादान अलग है। करुणादान के पात्र तो दुखी जीव हैं और सुपात्र दान के जो पात्र हैं, सुपात्र दान देने योग्य जो पात्र हैं वो दुखी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं समझो कि हम दुखी रहते हैं इसलिए आप दान देते हैं। हम दुखी हैं? हम दुखी नहीं, हम सुखी और आप दुखी। देने वाले दुखी हैं यहाँ। हाँ, इसलिए दे रहे हैं, यहाँ उल्टा है। हाँ हाँ, सुपात्रों को दान देना जो होता है वो करुणा दान नहीं है, वो सुपात्र दान है। सुपात्रों को दान देना यह धर्म को टिकाने के लिए है, उपकार के लिए है और स्वतः के कल्याण के लिए भी है। अब सोचो इसमें एक करुणा दान, जीवंधर कुमार ने दुखी जीव को उठाकर अपने गोदी में रख करके नमोकार मंत्र सुनाया, एक दुखी जीव है और एक मुनि महाराज है, वो दुखी है क्या? नहीं है। उनको जब दान देते हैं और इनको जब नमोकार मंत्र सुनाते हैं, किसमें ज्यादा लाभ है बोलो? किसमें ज्यादा आपकी विशुद्धि बढ़ती है और किसमें ज्यादा आपकी कर्म की निर्जरा होती है? सुपात्र दान में अधिक होगी। हाँ हाँ, करना चाहिए ना। जाते जाते कोई कुत्ता मर गया है और हम तो सुपात्र दान देते हैं, इसको नहीं कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कहेंगे क्या? दोनों को देखना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक्तु का लक्षण ही है कि जो सम्यक दृष्टि है उसका करुणा उसका लक्षण है, देना ही चाहिए। हाँ, ऐसा सोचता है, उसको भाग्य नहीं समझता। हाँ, ये दोनों में फर्क है। यहाँ पर ऐसा भाव नहीं आता कि मैं भाग्यशाली जो आज दुखी कुत्ता मुझे मिल गया, ऐसा भाव किसी के मन में भी आज तक आया है कि बोलो? हाँ उस दुखी को देखकर हृदय पिघल जाएगा और चलो चलो उठाओ उठाओ कुछ करो इसको इसको ठीक करो, ये भाव आते हैं। दुखी जीव को देखकर करुणा भाव आना, ये करुणा दान है। और पात्र को देखकर भक्ति भाव से उभर जाना, नवदा भक्ति से उभर जाना, ये सुपात्र दान के परिणाम। दोनों में अंतर है। समय हो गया जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांध रहे अब ना हम विषयांध रहे।